بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ آج کا کارکرم پوتر قرآن کے سورہ نساء کی 70ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قرآت کا شرح پراپت کر رہے ہیں شری محمد زادا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على اللہ للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ کیول ان لوگوں کی توبہ سویکار کرنا ایشور کے ذمے ہے جو اجانتا کے کارن برائی کر بیٹھتے ہیں، پھر شیگری توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ ایشور سویکار کر لیتا ہے، اور ایشور گیانی بھی ہے اور تتودرشی بھی۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کرم کرتے رہے اور پھر جب موت سامنے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے توبہ کر لی، اور نہ توبہ ان کے لیے ہے جو مرتے سمے تک کافر رہے، ان کے لیے ہم نے کڑا دنڈ تیار کر رکھا ہے۔
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, सभा में आपका स्वागत है। आज गुरुवार है, मई की 11, शव्वाल की 20 और उर्दी बहिश्त माह की 21 तारीख। कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। विगत की ही भांति आज भी हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ विश्व समाचारों से करेंगे। विश्व समाचारों के बाद राजनैतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। राजनैतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के उपरांत हम आपको दो साप्ताहिक कार्यक्रम सुनवाएंगे। पहला होगा आज की बात और अंत में आप सुनेंगे सफल महिलाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। इन कार्यक्रमों के बारे में आप अपने विचारों को हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। विदेश मंत्री कहते हैं कि तेहरान रियाज के संबंधों से अन्य देशों को भी लाभ होगा। ईरान ने फिलिस्तीनियों पर किए जा रहे जानियों के हमलों की निंदा की है। फिलिस्तीन के खैबर मिसाइल ने इसराइल की नींद उड़ाकर रख दी है। शहबाज शरीफ के घर पर इमरान के समर्थकों ने हमला किया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
विदेश मंत्री का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों की बहाली क्षेत्र और मुस्लिम जगत के लिए भी लाभदायक है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीन अब्दुल्लाहियान का कहना है कि तेहरान जल्द ही रियाज में अपना राजदूत तैनात करेगा। ICANA न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब में ईरानी दूतावास को फिर से खोले जाने की विस्तृत जानकारी जल्द ही सार्वजनिक कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंधों की बहाली से बड़ी संभावनाएं उत्पन्न होंगी, जिससे दोनों देशों, क्षेत्र और मुस्लिम जगत को बहुत लाभ पहुंचेगा।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अवैध अनिशासन ने मात्र दो दिनों के भीतर गजा पट्टी की लगभग 200 स्थानों पर हमले किए। उन्होंने कहा कि इससे अनिशासन का मुख्य लक्ष्य फिलिस्तीनियों के आवासीय क्षेत्रों को लक्ष्य बनाना था। नासिर गनानी ने यह बात गुरुवार को ट्वीट करके कही है। उनका कहना है कि जायनियों के अत्याचारों के बावजूद फिलिस्तीनी डटे हुए हैं। वे शहादत दे रहे हैं किंतु प्रतिरोध को नहीं छोड़ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि फिलिस्तीन के प्रतिरोधकर्ता गुट अपने संकल्प में मजबूत हैं और वे पीछे नहीं हट रहे हैं, जबकि विगत की भांति इस बार भी दुश्मन को विफलता हाथ लगेगी।
गजा पर इसराइल के हवाई हमले जारी हैं, जिनमें अब तक कम से कम 5 महिलाओं और 5 बच्चों सहित 24 लोग शहीद हो चुके हैं। इसराइली हमलों के जवाब में गजा स्थित फिलिस्तीनी प्रतिरोधी गुटों ने भी रॉकेट फायर किए हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोधी गुटों ने इसराइल की राजधानी पर 3 रॉकेट फायर किए, जिसके बाद ज़ायूनी अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। इसराइली मीडिया का कहना है कि पिछले 3 दिन से जारी ज़ायूनी शासन के हमलों के जवाब में गजा की ओर से अब तक सैकड़ों रॉकेट दागे जा चुके हैं।
गुरुवार को तड़के गजा के दक्षिण में स्थित खान यूनुस पर इसराइल ने हवाई हमला किया, जिसमें जिहाद इस्लामी का एक कमांडर शहीद हो गया है। जिहाद इस्लामी ने एक बयान जारी करके अपने एक सीनियर कमांडर अली गाली को श्रद्धांजलि देते हुए इसराइल को उनके खून का बदला लेने की चेतावनी दी है। इसराइल का दावा है कि शहीद होने वाले जिहाद इस्लामी के कमांडर अली गाली प्रतिरोधी गुट की रॉकेट लॉन्चिंग फोर्स के कमांडर थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अली गाली जिहाद इस्लामी की रॉकेट लॉन्चिंग यूनिट के प्रमुख थे, जिनकी हत्या के लिए इसराइल कई बार प्रयास कर चुका था।
अरब संघ ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से इसराइल के अपराधों की जांच की मांग की है। अरब संघ की मांग है कि निर्दोष फिलिस्तीनियों के विरुद्ध जिस प्रकार से अवैध ज़ायूनी शासन युद्ध अपराध कर रहा है, उसकी गहन समीक्षा की जानी चाहिए। इरना के अनुसार अरब संघ ने अपनी आपातकालीन बैठक के बाद अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से ये मांग की है। इस संघ के अनुसार फिलिस्तीनियों के विरुद्ध इसराइल के हर अपराध की गहन जांच होनी चाहिए और अतिक्रमणकारी शासन के रूप में इस पर दबाव भी बनाया जाए। अरब संघ की यह बैठक गजा की पट्टी पर ज़ायूनियों के युद्धक विमानों के हमलों के बाद आयोजित की गई है। ज़ायूनियों के ताज़ा हमलों में महिला और बच्चों सहित बहुत से फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं। इसी बीच फिलिस्तीन के प्रतिरोधकर्ता गुटों ने ज़ायूनी कॉलोनी वासियों की ओर कई मिसाइल फायर किए हैं। केवल एक घंटे में इसराइल की ओर सैकड़ों मिसाइल दागे गए।
इमरान खान के समर्थकों ने लाहौर में शहबाज शरीफ के घर पर धावा बोल दिया। स्पुतनिक समाचार एजेंसी के अनुसार इमरान खान की गिरफ्तारी से क्रोधित उनके समर्थकों ने लाहौर में इस देश के प्रधानमंत्री के घर पर ज्वलंतशील पदार्थ से हमला किया। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना के कई ठिकानों पर भी हमले किए। कुछ स्थानों से वे हथियार अपने साथ ले गए। सेना का कहना है कि आज से वो प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध बहुत कड़ी नीति अपनाएगी। प्रदर्शनकारी अब तक 14 सरकारी इमारतों और पुलिस के कम से कम 21 वाहनों को आग लगा चुके हैं। इसके अतिरिक्त वे चेक पोस्टों और सैन्य छावनियों पर भी हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से सेना को तैनात कर दिया गया है। इमरान खान के समर्थकों का कहना है कि उनके नेता को भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अब पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जहां पाकिस्तान में हिंसा और प्रदर्शन जारी है, वहीं खान की पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। गिरफ्तार होने से पहले कुरैशी ने एक वीडियो जारी करके कहा था कि पुलिस आ गई है मुझको गिरफ्तार करने के लिए। मैं एक पैगाम देना चाहता हूं, यह आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन है और हमें इसमें अपनी भूमिका निभानी है। आज इमरान खान उनकी गिरफ्त में है, उनकी जान को खतरा है। कुरैशी ने जनता से अपील करते हुए कहा, आप लोग हमारी असली आज़ादी की जंग को जारी रखें और तब तक न रुकें जब तक इमरान खान को रिहा ना कर दिया जाए।
डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन को उसकी आवश्यकता से अधिक हथियारों की आपूर्ति की जा रही है। CNN से बात करते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने इस देश की ओर से यूक्रेन को भेजी जाने वाली सैन्य सहायता के संबंध में किए गए सवाल के जवाब में कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन को बहुत सारे उपकरण दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान समय में हमारे पास अपने लिए गोला बारूद कम पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को फिर दोहराया कि अगर वे अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन संकट को 24 घंटों के भीतर सुलझा देते। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से पहले कि अमेरिका की ओर से यूक्रेन को बहुत अधिक हथियार भेजे जा रहे हैं, कई टीकाकार भी ये कह चुके हैं कि यूक्रेन को हथियारों की अधिक सप्लाई के ही कारण यह युद्ध रुक नहीं पा रहा है।
अमेरिका के तीन बड़े बैंक डूब गए हैं, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक बैंक डूब गए हैं। इसी के साथ अमेरिका के 186 बैंक डूबने की कगार पर बताए जा रहे हैं। 2008 के आर्थिक संकट के बाद दिवालिया होने वाला सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सेंटा क्लारा में स्थित इस बैंक की देश में 17 शाखाएं थी। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। बुधवार को मॉस्को में चार देशों रूस, सीरिया, तुर्की और ईरान के विदेश मंत्रियों ने सीरिया की स्थिति पर बैठक की और विचार विमर्श किया। बैठक के अंत में चारों देशों की ओर से संयुक्त बयान जारी किया गया। फिलिस्तीनी इलाकों पर इसराइल के हमलों में शहीद होने वालों की संख्या 25 हो गई है, जिसमें जिहाद इस्लामी संगठन के चार कमांडर शामिल हैं। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर कई वर्षों से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद जारी था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद विराम लग गया है। श्रोताओ, ये थे हमारी आज की चर्चा के विषय पर, पहले सीरिया। बुधवार को मॉस्को में चार देशों रूस, सीरिया, तुर्की और ईरान के विदेश मंत्रियों ने सीरिया की स्थिति पर बैठक की और विचार विमर्श किया। बैठक के अंत में चारों देशों की ओर से संयुक्त बयान जारी किया गया। इस बैठक में भाग लेने वाले चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि चारों देशों के उप विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रालयों और खुफिया प्रमुखों के समन्वय से तुर्की और सीरिया के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने का रोड मैप तैयार करेंगे। समीक्षा पेश करें साथ ही मिसम अब्बास।
बुधवार को मॉस्को में चार देशों रूस, सीरिया, तुर्की और ईरान के विदेश मंत्रियों ने सीरिया की स्थिति पर बैठक की और विचार विमर्श किया। बैठक के अंत में चारों देशों की ओर से संयुक्त बयान जारी किया गया। बयान में इन चार देशों के विदेश मंत्रियों ने सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने, इस देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और तुर्की सीरिया संबंधों की बहाली के लिए एक रोड मैप तैयार करने पर बल दिया। इस बैठक में भाग लेने वाले चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि चारों देशों के उप विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रियों और खुफिया प्रमुखों के समन्वय से तुर्की और सीरिया के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। ये तीसरी बार है जब मॉस्को ने पिछले दो महीने में सीरिया के मामलों पर बैठक की मेजबानी की है। पहली बैठक उप विदेश मंत्रियों और विशेष प्रतिनिधियों के स्तर पर 3 और 4 अप्रैल को मॉस्को में आयोजित हुई थी। 4 अप्रैल को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लारोव ने बैठक में भाग लिया था। इस बैठक में ही ये तय पाया था कि चारों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी मॉस्को में ही आयोजित होगी। उसके बाद 25 अप्रैल को चारों देशों के रक्षा मंत्रियों और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने मॉस्को में मुलाकात की थी। सीरिया की स्थिति को प्रभावित करने वाले देशों के बीच और तुर्की और सीरिया के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से आयोजित मास्को बैठक का आयोजन इस बैठक में भाग लेने वाले देशों के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इन देशों का प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके सीरिया की स्थिति को स्थिर किया जाए। अन्य देशों के साथ इस देश के संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया में भी तेजी आनी चाहिए। अरब देशों और तुर्की के सीरिया के साथ संबंधों के सामान्यकरण में हालिया वर्षों में तेजी आई है। अरब जगत में सीरिया की वापसी और अरब लीग में सदस्यता की बहाली इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सीरिया में सत्ता परिवर्तन के लिए अमरीका और इसराइल की साजिश की नाकामी के बाद उन अरब देशों ने भी अक्ल के नाखून लिए हैं जो इस साजिश में बढ़ चढ़कर सीरिया के दुश्मनों का साथ दे रहे थे। इस संदर्भ में सर्गेई लावरोफ ने मास्को की बैठक में कहा कि अमेरिका ने दमिश्क की सरकार के खिलाफ आतंकवादियों को इस्तेमाल करने के लिए फ्री सीरियन आर्मी जैसे आतंकवादी गुटों का गठन किया था, लेकिन सीरिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इन आतंकवादी गुटों को करारी शिकस्त दी और अपनी संप्रभुता की रक्षा की।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
फिलिस्तीनी इलाकों पर इसराइल के हमलों में शहीद होने वालों की संख्या 25 हो गई है, जिसमें जिहाद इस्लामी संगठन के 4 कमांडर शामिल हैं। इसराइल के हमले में एक ही परिवार के 3 लोग शहीद हो गए, जिसमें 2 मासूम बच्चे और उनका बाप शामिल था। समीक्षा पेश करें साथ ही अहमद अब्बास।
फिलिस्तीनी इलाकों पर इसराइल के हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 25 हो गई है, जिसमें जिहाद इस्लामी संगठन के 4 कमांडर शामिल हैं। इसराइली हमलों में महिलाओं और बच्चों की शहादत के हृदय विदारक दृश्य सामने आए हैं। एक हमले में तो एक ही परिवार के 3 लोग शहीद हो गए, जिसमें 2 मासूम बच्चे और उनका बाप शामिल था। मेराल नाम की एक बच्ची की जिंदगी को इसराइली दरिंदगी ने इस तरह निशाना बनाया कि उसके माता पिता और भाई मौत की नींद सो गए और मेराल नाम की बच्ची की समझ में नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने वाली वीडियो में मेराल नाम की बच्ची बिलख बिलख कर कह रही है, मेरे पिता को बुलाओ। मेराल अकेली फिलिस्तीनी बच्ची नहीं है जिसे इसराइल ने उसका परिवार बेरहमी से छीन लिया, बल्कि इस तरह के फिलिस्तीनी बच्चों की संख्या बहुत है और लगातार बढ़ती जा रही है। ये बच्चे अपना जीवन किस तरह गुजारेंगे, इस बारे में कोई कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकता। यहाँ ये बिंदु अहम है कि फिलिस्तीन से आने वाली इतनी दर्दनाक तस्वीरों और वीडियोस से उन देशों और सरकारों पर कोई असर नहीं होता जो इसराइल और इसराइली अपराधों का खुलकर समर्थन करती हैं, इसलिए कि उनकी तरफ से कभी कोई ठोस प्रतिक्रिया देखने में नहीं आती जो इसराइल पर अंकुश लगा सके। पश्चिमी मीडिया तो इस मामले में बेहद दोगला साबित हुआ है। यूक्रेन की जंग से जुड़ी खबरों और जंग की तबाही को सारी दुनिया में दिखाने, यहाँ तक कि बढ़ा चढ़ाकर बयान करने में पश्चिमी मीडिया आगे आगे रहा। उसने इसके लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, मगर फिलिस्तीनियों का दुख और उन पर होने वाले अत्याचार के बारे में उसका रवैया ऐसा है कि मानो उसे फिलिस्तीन की घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हकीकत है कि इसराइल बच्चों की हत्या का लंबा रिकॉर्ड रखता है और संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सीख लिया है कि इसराइल का खामोशी से समर्थन किया जाए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने ज़ायनी शासन के अपराधों पर पश्चिम की खामोशी का जिक्र करते हुए कहा कि फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ ज़ायनी शासन के हालिया अमानवीय हमलों और व्यवहार पर पश्चिमी देशों, विशेष रूप से पश्चिमी मीडिया की खामोशी के कारण इसराइल का अपार्थाइड प्रशासन और भी गुस्ताख होता जा रहा है। यह सच्चाई है कि इसराइल निरंकुशता से अपने अपराध जारी रखे हुए है और चूंकि उसके अपराधों पर उससे गंभीरता से सवाल नहीं पूछा जाता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संस्थाओं की ओर से उस पर गंभीरता से विरोध की आवाज नहीं उठाई जाती, इसलिए इसराइल इसका दुरुपयोग करता है और इसका गलत फायदा उठाते हुए अपने अपराधों और अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को आगे बढ़ाता जा रहा है।
दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर कई वर्षों से केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद जारी था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रशासनिक सेवाओं पर अधिकार दिल्ली सरकार का होगा। इस फैसले को दिल्ली सरकार की विजय के रूप में देखा जा रहा है। पूरी जानकारी के साथ दिल्ली से शमशाद काजमी।
दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर आज उस समय विराम लग गया जब उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर चुनी हुई सरकार का अधिकार होगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये फैसला संविधान पीठ की सर्वसम्मति से लिया गया है। शीर्ष अदालत ने राज्य की शक्तियों पर केंद्र सरकार की दलीलों से असहमति जताते हुए कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही जनता के प्रति जवाबदेह है। इस फैसले के बाद अब दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल यानी अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े फैसले लेने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र को दिल्ली में केवल जमीन, सार्वजनिक व्यवस्थाओं और पुलिस पर फैसला लेने का अधिकार है। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि दिल्ली के पूर्ण राज्य न होने के कारण उसके अधिकार अन्य राज्यों से कम हैं। संविधान पीठ ने इस मामले में पिछले 18 जनवरी को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले को दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 8 साल के संघर्ष के बाद दिल्ली की 2 करोड़ जनता को उनके अधिकार मिले हैं।
फैसला आया है, इसके लिए मैं एक लाइन में अगर मैं कहूं तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली की 2 करोड़ जनता को उनके अधिकार मिले हैं।
उधर उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के राजनीतिक विवाद में अब ये स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनी रहेगी। शीर्ष अदालत के फैसले ने उद्धव ठाकरे गुट को झटका जरूर दिया है, लेकिन साथ ही कुछ बातें ऐसी भी कही हैं जिनसे इस गुट को कुछ राहत जरूर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का फैसला गलत था और यदि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र नहीं दिया होता तो उन्हें राहत दी जा सकती थी।
देश में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था आज भी जिंदा है, संविधान मरा नहीं है या कोई संविधान की हत्या नहीं कर सकता। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो शिंदे गुट का व्हिप है वही गैरकानूनी इलीगल है, उसका मतलब है वो लोगों ने जो व्हिप बजाया था वो गैरकानूनी, और हमारा जो व्हिप था उसने जो आदेश दिया है वो कानूनी है, उस व्हिप के मुताबिक तो सब लोग अभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हिप कौन है? प्रभु है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैरकानूनी काम करेंगे?
कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को शिवसेना के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे का समय सीमा के भीतर निपटारा करने का आदेश दिया है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
तो श्रोताओ, शमशाद काजमी की इसी रिपोर्ट के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अब पेश है कार्यक्रम आज की बात।
आज की बात दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज हम भारत के राज्य मणिपुर में होने वाली हिंसा और उसके कारणों पर चर्चा करेंगे। अख्तर रिज़वी का सलाम स्वीकार कीजिए। मणिपुर में बहुसंख्यक मेतेई समाज द्वारा खुद का अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग के विरोध में निकाले गए एक मार्च के दौरान पिछले 3 मई को भड़की हिंसा में दर्जनों लोग हताहत हो चुके हैं। जहां पूरा मणिपुर हिंसा की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर छापामारों के हमले में भी तेजी आई है। समाचार वेबसाइट असम ट्रिब्यून में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कहा है कि चुराचांद जिले में शुक्रवार रात 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में पहाड़ी इलाके में रहने वाले 5 छापामार मारे गए और इंडिया रिजर्व बटालियन के 2 जवान घायल हुए। इंडियन एक्सप्रेस ने मणिपुर में फिर से हिंसा भड़कने की जानकारी देते हुए शनिवार को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि चुराचांदपुर में 4 लोगों की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब सुरक्षा बल इलाके से मेतेई के लोगों को निकाल रहे थे। चुराचांद में ये गोलीबारी राज्य के बहुसंख्यक मेतेई समुदाय और कुकी जनजाति के बीच भयंकर संघर्ष के कुछ दिनों के बाद हुई है। संघर्ष की शुरुआत 3 मई को हुई हिंसा से हुई थी। भारत के प्रसिद्ध टीकाकार प्रभाकरण मणि तिवारी मणिपुर की ताजा स्थिति को बयान करते हुए कहते हैं कि क्योंकि मणिपुर का पूरी दुनिया के साथ संपर्क कटा हुआ है, इसीलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वहां कितना जानी और माली नुकसान हुआ है।
अनाधिकारिक तौर पर तो देखिए, हालात अभी तक काबू में नहीं है। सीआरपीएफ के एक कमांडो जो छुट्टी मनाने घर आया था, उसको गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई। आयकर विभाग के एक अधिकारी की हत्या कर दी गई। और राजधानी इम्फाल में हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि लोग डर के मारे घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। मेरी बात हुई कल देर रात, एक दवा कंपनी के प्रतिनिधि थे इम्फाल में, किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचे पुलिस की मदद लेकर। उनका कहना था, सुजय चक्रवर्ती नाम है, उनका कहना था कि मुझे ऐसा लगा होटल के कमरे में बैठ के गोलियों धमाकों की आवाजों से कि मैं यूक्रेन में कहीं बैठा हुआ हूं। तो इम्फाल और यूक्रेन दोनों एक जैसे हो गए हैं, युद्ध क्षेत्र जैसी स्थिति है। तो अगर राजधानी में ये हालत है, जहां पूरी सरकार है, सेना है, सुरक्षा सलाहकार है, कुलदीप सिंह के नेतृत्व में कई अलग अलग टीमें बनाई गई है, तो राज्य के बाकी जिलों की हालत आप समझी जा सकती है। एकदम दुर्गम इलाके हैं मणिपुर के, जो खासकर पर्वतीय इलाके हैं, एक जगह पहुंचने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। वहां की खबरें भी अभी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इंटरनेट बंद है, हर तरह का इंटरनेट बंद है राज्य में, हर जिले में, तो खबरों का आना भी मुश्किल हो गया। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि 100 लोग मरे कि 200 लोग मरे और हालात कितने हैं। हाँ, ये बता सकता हूँ कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सर्वदलीय बैठक की और हालात पर विचार किया, कैसे इसे काबू में किया जा सकता है, जितनी जल्दी हो सके शांति बहाल की जा सकती है, इन उपायों पर चर्चा की। लेकिन उसके बाद उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस यही बताया कि हमने चर्चा की है और हम इस दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं।
राज्य की राजधानी इम्फाल में कुकी समुदाय को हिंसा का सामना करना पड़ा, वहीं मेतेई समुदाय को पहाड़ी जनजातियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में निशाना बनाया गया। चुराचांदपुर में ताजा गोलीबारी तब हुई जब इलाके से मेतेई को निकाले जाने की कार्रवाई में आदिवासियों ने कथित रूप से हस्तक्षेप करने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ी और मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने भारत की केंद्र सरकार और मणिपुर की राज्य सरकार से अपील की है कि मणिपुर जल रहा है, इसको बचा लीजिए।
अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत बुरा फील कर रही हूँ कि अभी ये वायोलेंस अचानक में सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है करके। और ये कल रात से लेके बहुत भयंकर मतलब वो ज्यादा हो रहा है और मुझे चाहती हूँ कि हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे।
असम ट्रिब्यून के मुताबिक एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि लगभग 13,000 लोगों को बचाकर सुरक्षित आश्रयों में भेजा जा चुका है। कुछ को सेना के शिविरों में भेज दिया गया है जबकि सेना ने चुराचांद, मोरे, काकचिंग और कांगपोक्वी जिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। सेना और असम राइफल्स के लगभग 10,000 सैनिकों को राज्य में तैनात किया गया है। मणिपुर के हालात अचानक इतने खराब क्यों हो गए इसका कारण बताते हुए टीकाकार प्रभाकर तिवारी कहते हैं,
मणिपुर को पहले इसकी भौगोलिक बसावट को समझना होगा। इस विवाद के जड़ में जाने से पहले पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों के मुकाबले मणिपुर की भौगोलिक बसावट कुछ अनूठी है। यहाँ यह राज्य दो इलाकों में बटा हुआ है, एक पर्वतीय इलाका है, एक मैदानी इलाका है। पर्वतीय इलाके में हालांकि आदिवासी रहते हैं जिनको जनजाति समूह कहा जाता है, नागा, कुकी और 32-33 जनजातीय समूह रहते हैं, लेकिन विधानसभा की सिर्फ 20 सीटें ही वहां है। और जो सबसे बड़ा तबका है मैतेई समुदाय, ये मैदानी इलाकों में रहता है, 40 सीटें हैं वहां और इनकी आबादी राज्य में सबसे ज्यादा है। जनजातीय समूहों की आबादी जहां करीब 40% है, इनकी 53% आबादी है वहां, 54%। तो ये टकराव यहां बहुत पुराना है। 1949 में जब भारत में विलय हुआ उसके पहले से ही एक विभाजन रेखा, आप देखें तो मणिपुर का इतिहास देखें तो एक विभाजन रेखा साफ नजर आती है। पर्वतीय इलाके के लोगों में और मैदानी इलाके के लोगों में, नेताओं में एक विभाजन, हमेशा एक टकराव रहा है। कभी ऊपर आता है, कभी अंदर खाने रहता है, लेकिन ये टकराव हमेशा रहा है। और ताजा विवाद भी उसी की एक कड़ी है। और पहले भी आपको याद होगा मणिपुर में पर्वतीय और मैदानी इलाकों के बीच अलग अलग मुद्दों पर टकराव होता रहा है, लेकिन इस बार ये ज्यादा इसलिए है कि जनजातीय समूहों के सामने अपने वजूद पर खतरा उनको नजर आ रहा है, क्योंकि मैतेई लोग भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहे हैं। और आपको बता दूं अभी मैतेई लोगों को पर्वतीय इलाकों में रहने, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैतेई लोग मांग रहे हैं, तब उनको वो अधिकार मिल जाएंगे। और बाकी लोगों को 371F के तहत विशेष अधिकार मिले हुए हैं जो जनजातीय समूह है, तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज की बात। इस कार्यक्रम में हम हर गुरुवार को चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण विषयों पर। कार्यक्रम आज की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और शीर्ष अधिकारियों के साथ मणिपुर में स्थिति की समीक्षा की। केंद्र ने वहां शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल और दंगारोधी वाहनों को भी भेजा है। सूत्रों ने बताया कि लगभग 1,000 और केंद्रीय अर्धसैनिक बल दंगारोधी वाहनों के साथ शुक्रवार को मणिपुर पहुंच गए। याद रहे कि मणिपुर का बहुसंख्यक मैतेई समुदाय खुद को अनुसूचित जनजाति ST का दर्जा देने की मांग कर रहा है, जिसका आदिवासी समुदाय विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे उनके संवैधानिक सुरक्षा उपाय और अधिकार प्रभावित होंगे। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहते हैं कि फालतू की बातों के बजाय मुख्य बातों पर ध्यान दें।
खाना जंगी हो रही है, मगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटका में आकर जनता से अपील कर रहे हैं कि वो जो केरला में पिक्चर बनाई गई उसकी ताईद में प्रधानमंत्री अपने भाषण में बात कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, कर्नाटका का चुनाव जरूर है मगर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को जान से उनकी जान ले लिए। मणिपुर जल रहा है, लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, गांव जल रहे हैं, चर्चिस को जला दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री जो है उस एक गंदी पिक्चर के बारे में चुनाव में कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं और आकर उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिक्चर में कहा गया केरल के 32,000 औरतें आईसिस ज्वाइन की उस पिक्चर में लिखा गया प्रमोशन में। बाद में कोई कोर्ट को गए तो उसने कह दिया कि नहीं सर खाली 3 नंबर है। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुलकर कहो फैक्ट पर बनाई गई, अगर तुम फिक्शन पर बना रहे तो बोलो फिक्शन पर बना रहे, तुम्हारा मसला हमारे बुरखे को दिखाकर किसी को मुसलमान दिखाकर तुमको अपना पेट बना है तो फिर याद रखो लोग उसको मुस्तरद कर देंगे।
दोस्तों आपको ये जानकर यह आश्चर्य होगा कि मणिपुर का जो समुदाय 53% या 54% है उसे मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसा धारा 371 के तहत किया गया है, इसीलिए मेतेई और वहां के आदिवासी समुदायों में टकराव होता रहता है। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि मेतेई समुदाय एसटी कोटे में आने की मांग क्यों कर रहा है। विचार सुनिए भारतीय टीकाकार प्रभाकर मणि तिवारी जी के।
जी ये 2-3 चीजें हैं, ये तनाव दरअसल 1 महीने से चिंगारी भड़क रही थी लेकिन मैं तो कहूंगा कि सरकार और खुफिया एजेंसियों को उनको कल्पना नहीं थी कि ये इस कदर भड़क जाएगी इसकी आग। दरअसल राज्य सरकार ने बीते दिनों करीब 2 महीने पहले एक अभियान शुरू किया था कि जंगल क्षेत्र में वन क्षेत्र में जो अवैध कब्जा है उनको हटाने का एक अभियान चलाया था। इसके तहत 3 चर्च तोड़े गए थे पर्वतीय इलाकों में और आपको बता दूं जो जनजातीय समूह है उनमें से ज्यादातर ईसाई हैं, तो 3 चर्च तोड़े गए थे उसकी एक नाराजगी थी। राज्य सरकार का कहना था कि सीमा पार से म्यांमार से कुकी और नगा जनजाति के लोग भाग कर आ रहे हैं, अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, अफीम की खेती कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ सरकार का अभियान था। उसी अभियान के तहत 3 चर्च उसके दायरे में आ गए तो सरकार ने चर्चों को तोड़ दिया, उसकी एक नाराजगी थी। इस बीच मणिपुर हाईकोर्ट में मैतेई जो शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी थी इनकी मैतेई की, उसने एक याचिका दायर की हुई थी कि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, जिसमें दलील दी गई थी कि भारत में विलय के पहले उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल था, मणिपुर जब अलग एक राज्य था। तो 19 अप्रैल को हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि राज्य सरकार से कि पुरानी सिफारिशों पर इस बात पर विचार करें कि क्या इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं और ये बताएं विचार करके केंद्र को सिफारिश भेजें। इसके बाद ये आग भड़क गई, कई चीजें एक साथ जमा हो गई तब ये बारूद फटा है। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई इंटरनेट और ये बंद होने से पहले, उनका कहना था जो राजनीतिक विश्लेषक पुराने पत्रकार कि अचानक एक साथ इतनी जगह आग भड़की इसका मतलब यह सब कुछ सुनियोजित था, पहले से प्लान था। अचानक एक साथ पूरे राज्य में जब इलाका इतना दुर्गम हो तो यातायात के साधन नहीं हो तो एक साथ सुनियोजित तरीके से ऐसी हिंसा नहीं हो।
दोस्तों कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, हमें इजाजत दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों आपने कार्यक्रम सुना आज की बात, जिसे पेश किया अख्तर अब्बास ने। हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं parstoday.ir/hi। और दोस्तों अब पेश है हमारी आज की सभा का अंतिम कार्यक्रम सफल महिलाएं।
सफल महिलाएं।
दोस्तों कार्यक्रम सफल महिलाएं की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है। अख्तर रिज़वी और मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
पूरी दुनिया में महिला उद्यमी हर दिन अपने देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिकाएं निभा रही हैं। ईरान भी इससे अछूता नहीं है, बल्कि बहुत सारे देशों की तुलना में ईरान में सफल महिला उद्यमियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन्हीं सफल महिला उद्यमियों में एक नाम फरियाल मुस्तफ़ी का आता है। फरियाल मुस्तफ़ी एक ईरानी पूंजीपति और उद्यमी हैं जो खनन क्षेत्र में काम करती हैं। उनकी ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और हांगकॉन्ग में कंपनियाँ हैं। श्रीमती मुस्तफ़ी एकमात्र ईरानी महिला हैं जो ईरान में सबसे बड़ी खदान की मालिक हैं और जिस परियोजना से अपना संचालन शुरू किया है वो 10,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करती है।
फरियाल ने सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री के साथ स्नातक किया है। माइनिंग समूह से प्राप्त होने वाले उद्योगों में होल्डिंग कंपनियों में काम करके वो वर्ष 1993 में स्थापित इस कंपनी के प्रबंधन निदेशक के पद पर पहुंची। वो ईरान चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निदेशक मंडल की सदस्य भी रही हैं और उन्होंने ईरान चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निवेश आयोग में बहुत ही प्रभावी और कुशलता से काम किया है। वे सातवें और आठवें चरण में ईरान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज, माइंस एंड एग्रीकल्चर के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधिमंडल की सदस्य भी थीं। मुस्तफ़ी का कहना है कि वो एक परिवार के तौर पर हमें कठिन चीज़ें करने की कोशिश करने की आदत है क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ईरान से प्यार करती हूं और इस ज़मीन और पानी को अपने होने का हिस्सा मानती हूं। इसीलिए मैं इसके विकास की दिशा में काम करने के लिए हमेशा तैयार हूं।
फरियाल मुस्तफ़ी जब 23 साल की थीं तब उन्होंने शहीद बेहेश्ती विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में सांख्यिकी पढ़ाया था और 3 साल के शिक्षण के बाद सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत और विश्वविद्यालयों के बंद होने की वजह से उन्हें घर पर रहने से उलझन होने लगी और वो इसको सहन नहीं कर पा रही थी कि घर पर बंद कर रह जाए। इसी दौरान उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना की और अपनी पहली व्यावसायिक गतिविधियां शुरू की। वो खुद अपनी गतिविधियों के बारे में इस तरह बताती हैं कि वैसे तो मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं अपनी गतिविधियों की शुरुआत ईरान से करूं, लेकिन हमेशा वो नहीं होता जो आप सोचते हैं। मेरे साथ भी हुआ, मेरी किस्मत मुझे ब्रिटेन ले गई और मजबूरी में मुझे वहीं से अपने व्यवसायिक गतिविधियों को शुरू करना पड़ा। शायद इसी कारण मुझे अपनी पहली कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में करना पड़ा। ब्रिटेन में अपनी व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने के लिए चुनने का कारण ये था कि मैं इस देश में कई वर्षों से रह रही थी और जीवन और कार्य के सिद्धांतों और नियमों से परिचित थी। हालांकि दुनिया में कहीं भी आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि शुरू करना मुश्किल है, लेकिन मैं चुनौतियों का स्वागत करती हूँ। शायद ये कहना बेहतर होगा कि मैं जो चाहती हूँ उसे आसानी से प्राप्त करना पसंद नहीं करती। अगर मैं किसी चीज़ को चाहती हूँ तो उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करती हूँ, तो मैंने जो हासिल किया वो मेरे लिए सुखद और मूल्यवान है।
फरियाल मुस्तफ़ी को वर्ष 2015 में उद्योग, खनन और व्यापार मंत्रालय द्वारा वर्ष की शीर्ष 10 महिला उद्यमियों में से एक के रूप में चुना गया था। वो इस बारे में कहती हैं कि वर्तमान में जिस कंपनी का मैं प्रभारी हूँ वो चीनी और यूरोपीय कंपनियों के साथ मिलकर परियोजनाओं को लागू करने के लिए कटिबद्ध है और हम उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे के साथ एकजुट हैं, लेकिन इस तरह से क्रियान्वित की गई अधिकांश परियोजनाएं इस्पात और खनन के क्षेत्र से संबंधित हैं। वर्तमान समय में अपने पति के साथ मिलकर हम ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और हांगकॉन्ग में 4 कंपनियों और ईरान में 3 कंपनियों का प्रबंधन करते हैं जो परियोजना प्रबंधन, ERP, MIS, उद्योगों, मशीनरी और स्पेयर के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात के क्षेत्र में काम करती हैं।
कुछ कंपनियों में मैं CEO हूँ और मेरे पति निदेशक मंडल के अध्यक्ष हैं, और कुछ कंपनियों में मैं निदेशक मंडल के अध्यक्ष हूँ और मेरे पति CEO हैं। खुजस्तान की रहने वाली श्रीमती मुस्तफ़ी जो बिना काम किए एक बेहतरीन जीवन गुजार सकती थी, लेकिन उन्होंने काम करने को प्राथमिकता दी और वर्ष 70 की आयु में वो पूरे जोश और जज्बे के साथ आज भी व्यवसायिक क्षेत्र में सक्रिय हैं और कहती हैं कि उन्हें अपने पिता से काम करने का प्यार और जुनून विरासत में मिला है, जबकि ये भी सच्चाई है कि काम की कोई उम्र नहीं होती।
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले एक पत्रकार का फरियार मुस्तफ़ी के बारे में कहना है कि श्रीमती मुस्तफ़ी सबसे आकर्षक किरदारों में से एक हैं कि जिनके साथ मैं आर्थिक क्षेत्र के समाचारों के संबंध में जुड़ा हुआ हूं। वो हमेशा आधुनिक और समकालीन मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल करती रहती हैं और साथ ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों की यात्रा भी करती रहती हैं। वो बचपन से ही धनी रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कड़ी मेहनत करना बहुत पसंद है। वो कभी नहीं थकने वाली महिला हैं। रात 9 बजे भी उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया है। मैं कभी भी अपनी उम्र के 60वें साल में इतने उत्साह की कल्पना नहीं कर सकता। श्रीमती मुस्तफ़ी का जीवन बहुत ही व्यस्त है। उनकी ईरान, यूरोप, चीन और हांगकांग में कई कंपनियां हैं और इन कंपनियों की कई बड़ी परियोजनाएं प्रगति पर हैं, लेकिन वो इसके बावजूद आगे बढ़ने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखती हैं। इस बारे में वो स्वयं बताती हैं कि आप जीवन के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपका दिल महान सामाजिक कार्यों के लिए धड़कता है और अपने लिए सफलता और विकास से ज़्यादा अपने देश को आगे बढ़ने में मदद करता है। मैं अपने देश की सेवा के लिए प्रबंधकीय और औद्योगिक कार्यों के वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभवों का उपयोग करना चाहती हूँ।
दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल पैदा हो सकता है कि फरियाल मुस्तफ़ी ने कैसे इतनी प्रगति की और इन कंपनियों की मालिक वो कैसे बन गई और आज विश्वास के साथ इतने शिखर पर वो क्यों खड़ी हैं। वो खुद इस बारे में बताते हुए कहती हैं, अगर मेरी जगह होते जैसा कि मेरे पिता खुजिस्तान में एक प्रभावशाली और सफल व्यक्ति थे, तो वे वृद्ध और विकास के बारे में कम सोचते, लेकिन जीवन में मेरे आदर्श मेरे पिता ही थे, क्योंकि उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरी मेहनत के साथ काम किया और कभी भी ये सोचकर नहीं बैठे कि उनके पास तो इतने पैसे हैं तो उन्हें क्यों काम करना चाहिए। वे हमेशा प्रगति के बारे में सोचते थे और उसको हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करते थे। शायद यही वो मॉडल था जिसने मुझे आगे बढ़ने और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसा मॉडल जिसमें लिंग परिप्रेक्ष्य और एक महिला होने की भूमिका नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत ताकत पहला शब्द है। इसीलिए मैंने भी इन क्षमताओं को विकसित करने की कोशिश की और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करने में सक्षम हुई। मैंने व्यवसाय और परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में एक कंपनी स्थापित करके पहला कदम उठाया और उसके बाद विश्वविद्यालयों में अध्यापन के अलावा मैंने गंभीरता से उद्योग के क्षेत्र में प्रवेश किया।
श्रीमती मुस्तफ़ी को सतत विकास में महिलाओं की भूमिका की प्रदर्शनी में वर्ष की शीर्ष 10 महिलाओं में से एक के रूप में चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा एक और विशेषता है जिसे आसानी से अनदेखा नहीं किया जा सकता। मुस्तफ़ी सम्मन में कहती हैं कि एक ईरानी महिला आर्थिक कार्यकर्ता का अंतर्राष्ट्रीय चेहरा विदेशी प्रतिस्पर्धियों से अलग नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकती हूँ कि अर्थव्यवस्था और उद्योग में मेरी उपस्थिति और गतिविधि दुनिया में एक महिला उद्यमी के मानकों से अलग नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो ईरान में मैंने लिंग के कारण प्रतिबंधों के अस्तित्व को महसूस नहीं किया, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी भावनाओं वाले लोग महिलाओं के बीच अल्पमत में हैं और ऐसा लगता है कि कई महिलाएं लिंग को एक सीमा मानती हैं। श्रीमती मुस्तफ़ी कहते हैं कि तथ्य यह है कि केवल एक पुरुष को प्रोत्साहित करना और उसका समर्थन करना प्रगति का रास्ता नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि हमारे वर्तमान समाज में महिलाओं को समर्थन की आवश्यकता है। बेशक ये केवल समर्थन के बारे में नहीं है, बल्कि महिलाओं की प्रगति में बाधा भी रिश्ते का दूसरा पहलू है, जिसे हम कभी कभी आर्थिक और सामाजिक साझेदारी में देखते हैं। आर्थिक औद्योगिक वातावरण एक युद्ध की तरह है और यदि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में रहकर लड़ना चाहता है तो उसे गृह युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। इसलिए परिवार का समर्थन पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग नहीं है और एक व्यक्ति सफल होता है यदि वह स्वयं को आकर्षित करे कि दिशा में समर्थन को निर्देशित कर सकता है।
श्रीमती मुस्तफ़ी कहती हैं कि वर्षों से पुरुष व्यवसायों की प्रमुख भूमिका निभाते चले आ रहे हैं और व्यवसाय की दुनिया पर हावी रहे हैं, लेकिन सफल और सक्षम महिलाओं के उभरने के साथ दुनिया भर में महिला उद्यमियों और व्यवसायियों के लिए एक बिल्कुल नया युग शुरू हो गया है। आज महिलाएं पुरुषों के बराबर स्थिति में हैं और उन्होंने प्रकाशन, प्रौद्योगिकी, मीडिया उद्योग सहित विभिन्न उद्योगों में अपने नाम से व्यवसाय स्थापित किया है। उद्यमिता की श्रेणी का तेजी से विस्तार हो रहा है और दुनिया में कई देशों में महिला उद्यमिता रुचि का विषय है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि महिलाओं द्वारा उद्यमशीलता की गतिविधियों की देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य में प्रमुख भूमिका है। कम से कम महिलाएं ही व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश कर अपने देश के आर्थिक विकास में प्रभावी भूमिका निभाने में अहम किरदार अदा कर सकती हैं।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारी आज की सभा आपको कैसी लगी, इस बारे में आप अपने विचार हमें लिख भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। हमारी वेबसाइट है partstoday.ir/hi। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की, क्षमा कीजिएगा, रेडियो तेहरान की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। खुदा हाफिज़। Thank you.